जो लोग तुम्हारे पापा के शुभचिंतक थे, जो सच में तुम्हारी मदद करना चाहते थे, जिन लोगों ने भी तुम्हारी सहायता की कोशिश की, उन्हें डरा धमकाकर चुप करा दिया गया। तुम्हारे हालात ऐसे बना दिए गए कि तुम्हें शादी करनी ही पड़े, और शादी के बाद तुम भी उनकी हो जाती और फैक्ट्री भी। फिर उनके नशे के कारोबार में कोई रुकावट नहीं रहती। आदित्य की बात सुनकर मनाल का दिमाग जैसे उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। अब तक उसके लिए एक ही शक के घेरे में था आदित्य। उसकी नज़रों में अब तक वही एक इंसान था जो उसके पापा के एक्सीडेंट के बाद उसके करीब आया था। ना कोई रिश्तेदार, ना पुराना दोस्त, ना ही कोई भरोसेमंद बिजनेस सहयोगी, बस एक नाम, आदित्य। मेरे पापा के एक्सीडेंट के बाद मुझसे शादी करने की बात किसी और ने तो नहीं की, पर आपकी तरफ से ज़रूर ऑफ़र आया था। आपने ही कहा था कि आप मुझसे एक डील करना चाहते हैं, याद है आपको? मनाल ने अपनी तीखी आंखों से आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, हाँ, मुझे सब याद है माना। मुझे तुम्हारी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तो क्या आप वो लीडर हो जो मेरी फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहता था? मनाल की आवाज़ कड़वाहट से भरी थी। आदित्य जोर से हंसने लगा। तुम्हें लगता है कि मैं ही उस गिरोह का सरगना हूँ? मैंने ही तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट कराया और अब तुम्हें शादी के नाम पर फंसा लिया? हंसने वाली बात नहीं है। आपने खुद कहा कि उस लीडर की नज़र मुझ पर थी और वो मेरी फैक्ट्री भी चाहता था। तो अब जब आप हर बात जानते हैं, सब कुछ, हर एक डिटेल, तो बताइए, आपको ये सब कैसे पता? आदित्य ने लंबी सांस ली, फिर गंभीर होकर बोला, ठीक है माना, अब तुमने पूछ ही लिया है तो सब बता देता हूँ, लेकिन एक बार फिर कहता हूँ, बीच में मत बोलना, थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनना। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम मिस्टर डिसूजा के ऑफिस में बैठी थीं? मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। तुम मेरे सामने थीं, लेकिन तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, मगर तुमने मेरी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। मनाल ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, मुझे याद है, मैं बहुत परेशान थी उस दिन। आपको देखकर मन और भी खराब हो गया था। उस दिन मैं बिल्कुल टूटी हुई थी और आप उस पल में आखिरी इंसान थे जिससे मैं बात करना चाहती थी। आदित्य ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहा, मगर तुम्हें देखना मेरे लिए कुछ और ही था। तुम्हारा उदास चेहरा मेरी आंखों से उतर ही नहीं रहा था। मैंने उसी दिन कुछ लोगों को लगाया कि तुम्हारे बारे में पता करें और फिर मुझे सब मालूम चला, तुम्हारे पापा की हालत, फैक्ट्री की तबाही और तुम्हारी तन्हाई। मगर आपने तब भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बस एक डील ले आए कि मुझसे शादी कर लीजिए और मैं आपकी मदद करूंगा। मनाल की आवाज़ में फिर गुस्सा लौट आया था। माना, सोचो, उस वक्त अगर मैं तुम्हें आकर सच बताता तो क्या तुम मुझ पर यकीन करती? तुम तो मुझसे नफरत करती थीं, तुम्हें मेरी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं था। तुम्हें लगता कि मैं भी वही कर रहा हूँ जो बाकियों ने किया, फ़ायदा उठाना। इसीलिए मैंने सीधे तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे पास वक्त नहीं था, मेरे पास भी नहीं। लेकिन आपको कैसे पता था कि मैं आपकी बात मान जाऊंगी? मुझे पूरा यकीन नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि तुम अपने पापा की जान बचाने के लिए कुछ भी करोगी। अगर मेरी जगह वो गिरोह वाले भी सामने आते तो शायद मजबूरी में तुम उनका प्रस्ताव भी मान लेती। मैं जानता था उस वक्त तुम अपने पापा के लिए सब कुछ छोड़ सकती हो, इसीलिए मैंने एक खटिया डील बनाई जिससे तुम मुझे घिनौना समझो मगर मजबूरी में हाँ करो, ताकि मैं तुम्हें, तुम्हारे पापा को और तुम्हारी फैक्ट्री को बचा सकूँ। मगर मैं कैसे यकीन करूं कि आप सच बोल रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? मनाल की आंखें आदित्य की आंखों में टिक गईं। आदित्य चुपचाप उठा, अलमारी खोली और एक हार्ड ड्राइव निकाली, लैपटॉप चालू किया और उसमें एक वीडियो फाइल प्ले की। ये क्या है? ये कौन लोग हैं? आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं ये सब? यही वो सबूत है जो साबित करेंगे कि मैं झूठा नहीं हूँ। जो बातें मैंने अभी कही उनका एक एक पल इस रिकॉर्डिंग में कैद है। अब चुपचाप बैठो और सुनो। वीडियो में सुनाई दे रही थी कुछ लोगों की बातचीत। महेश खन्ना नहीं माना तो उसका एक्सीडेंट करना पड़ा। बहुत समझाया था उसे, मगर जिद्दी निकला। पुलिस में जाने की धमकी दे रहा था साला। अभी तक मरा नहीं वो, कोमा में पड़ा है। बड़ा सख्त जान है, इतना बड़ा एक्सीडेंट करवाया फिर भी बच गया। अगर कहो तो वहीं अस्पताल में काम तमाम कर दूं उसका। मेरा एक आदमी वहीं काम करता है। एक इशारे की देर है। नहीं, रहने दो। वैसे भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ भी हमारे काम का है। उसके इलाज का खर्चा उसके घर वालों को ही उठाने दो। हमें बस उसकी फैक्ट्री चाहिए। जब जरूरत नहीं रहेगी वहीं खत्म कर देंगे। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। मनाल की आंखें अब भी स्क्रीन पर थीं, मगर उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके पापा, उसकी फैक्ट्री और उसका खुद का जीवन एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसका सिरा अब जाकर खुला था। अब आगे क्या? क्या अब मनाल आदित्य पर यकीन करेगी? क्या वो उसके उस डील के पीछे छुपे सच्चे मकसद को समझेगी, या उसका डर और शक अब भी उसे बांधे रखेगा?